पृष्ठ संख्या 127। लंका की एक रात। कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात अर्थात पहले दबी पांव, सावधान चक्षु, संध्या, तब निर्मल चंद्रोदय, फिर मुक्त ज्योत्सना और अंत में मर्दिता घर्षिता शेष रात्रि, जिसका अवसान उबासी, उपरती और अपच में होता है। सुंदर कांड के सर्ग 4 से सर्ग 11 तक पढ़ता गया और अंत में मुझे लगा कि मैं गांव के प्रीति भोज के बाद फेंके गए जूठे पत्थरों और मृद भांडों के बीच बैठा हुआ हूँ। वाल्मीकि ने सचमुच यहाँ संकेत गर्भ ही काव्य प्रस्तुत किया है। एक काम विद्धि पूरी है, उस पर काम रूपी रात अपनी उदार, विदग्ध और विकृत तीनों भूमिकाओं के साथ उतरती है और इसी मायामय वातावरण में एक स्थिति धति पुरुष निराहार व्रतबद्ध रूप में खंड खंड प्रीति खंड कोण प्रति कोण दबे पांव सावधानी से चल रहा है। वह पछताता है, फिर संभलता है, कुछ क्रुद्ध होता है, फिर संभलता है, निराश होता है, फिर संभलता है। अद्भुत धीरता के साथ एक वानर वीर लंका का कोना कोना छान रहा है। सीता हरण हुए 10 मास हो चुके हैं। सीता हरण माघ के अंतिम भाग में या फागुन के प्रारंभ में बिंदु मुहूर्त में हुआ था, तब यह 10वां मास चल रहा है और संभवतः अगहन शुक्ल एकादशी तिथि है। कम से कम पद्म पुराण का तो यही साक्ष्य है। यद्यपि उत्तर भारत के रामायणियों में प्रचलित तिथि क्रम से पद्म पुराण में उल्लिखित तिथि क्रम मेल नहीं खाता है, विशेषतः सीता हरण प्रसंग के बाद, पर मार्गशीर्ष की एकादशी को समुद्र लंघन, द्वादशी को सीता दर्शन और 13 को लंका दहन दोनों परंपराओं में मान्य है। भेद आता है पक्ष के संबंध में, पर यदि वाल्मीकि रामायण को पढ़े तो ज्ञात होता है कि रात्रि के प्रारंभ होते ही चंद्रोदय हो गया, अतः यह निश्चित ही शुक्ल पक्ष का वर्णन है। सुंदर कांड पढ़ने से ज्ञात होता है कि सीता से भेंट जिस दिन हुई उसके पहले की रात को वे संध्या से रात्रि के अंतिम क्षणों तक लंका काम रूपिणी नगर के सारे लीला व्यापक को हाट बाट वन वीथ घूम घूम कर देखते रहे। जिस संध्या को वे रात्रि आगमन के साथ ही प्रवेश करते हैं उस संध्या को चंद्रोदय लांछित रूप में वर्णित किया गया है। मारुति के सहायक के रूप में साचिव्यमिव चंद्रमा का उदय द्वितीय सर्ग में ही कह दिया गया है। शंख प्रभ क्षीर मृडाल वरणम उद्वंग छम्मानम व्यभाषमानम ददर्श चंद्रम सकवि प्रवीर प्रोप्लूयमानम सरसी वहंसम। ज्योत्सना की धारा में प्लावित होकर यह मायापुरी और काम रूपिणी एवं और बहुरूपी जान पड़ती है। पृष्ठ संख्या 128। कपि इस रावण बहुपालिता पुरी के सिंह द्वार से न प्रवेश करके परकोटे को फांदता है और वाम पग से इसमें प्रवेश करता है। चांदनी एक माया दर्पण है जिसमें कटु कठोर चेहरे पर भी एक अस्पष्टता का और फलतः एक कोमलता का प्रलेप हो जाता है। चेहरे की स्पष्ट कटुतीक्षण रेखाएं दुग्धाम छाया में फ्लूत सी हो जाती हैं। कपिश्रेष्ठ के कवि मन को इस ज्योत्सना वितान और चंद्रमंडल ने बड़ा ही प्रभावित किया। वाल्मीकि की अंतर्दृष्टि काफी कपि के मन में मृगपति सरिस असंक चंद्र को देखकर उठे हुए विरोपम उदात्त भाव बिंबों को पहचान जाती है और इन्हें इस प्रकार व्यक्त करती है। हंसो यथा रजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, शश्चंद्र पीव भ्रजा तथा अंबरस्थ, शिलालत प्राप्य यथा मृगेन्द्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेन्द्र, राज्य समाशाद्य यथा नरेन्द्र तथा प्रकाशो वीरराज चंद्र। वाल्मीकि व्यास और तुलसीदास उन कवियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें योगी अरविंद के शब्द में पुरुष प्रधान या मर्दाने कवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। चंद्रमा को देखकर कवि को किसी चंद्रोपम उर्वशी मुख की याद नहीं आती। कवि की सारी उपमाएं मर्दानी हैं। मित्र विषभ, मत्त गयंद, शिल्प शिला समासीन मृगेंद्र, गर्वोन्नत कुंजस्थ वीर आदि। ये सारी उपमाएं उस वानर चरित्र के समानांतर जाती हैं जिसकी सृष्टि करना इस सुंदर कांड का मूल उद्देश्य है। इसी से चंद्रमा का प्रथम वर्णन कवि ने श्रृंगार संपन्न पर श्रृंगारिकताहीन अपूर्व श्रीमती भाषा में किया है। उदात्त पौरुषमय श्लोकों के बीच में ऐसे लक्ष्मी संपन्न श्री संपृक्त श्लोकों में भी गुथे गए हैं और चंद्रोदय का प्रथम दर्शन वीरता और ओज के साथ निर्मलता, कांति, स्वास्थ्य, दोष मुक्ति और संपन्नता का वातावरण भी तैयार करता जाता है। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधीचापि शमेधयन्तं भूतानि शर्माणि विराजयन्तं ददर्श शीताशुमन्थाभियान्म या भाति लक्ष्मीर्भुवति मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सारगरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था सरराज साचारु निशाकरस्था।